हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयु अपने घर लुधियाना आ गई थी। उसकी फैमिली उससे मिलने के बाद ऑफिस जा चुकी थी, जबकि उसके साथ अनुष्का घर पर ही रुकी हुई थी। बिजनेस फैमिली होने की वजह से आयु की फैमिली इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल थी। अनुष्का से बात करते हुए मंथन को पता चला कि आयु को किसी बात को लेकर अपनी फैमिली से नाराजगी है। मंथन आयु से कुछ पूछ पाता उससे पहले वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। अनुष्का उसके पीछे जाने को हुई, तभी मंथन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ उसका मूड कैसे सही करना है, मैं कर दूंगा। अनुष्का मंथन की तरफ पलटी और उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। हालांकि वो मंथन से ठीक से पहली बार मिल रही थी, पर एक ही मुलाकात में उसने पहचान लिया था कि मंथन किस हद तक आयु से प्यार करता है। सच कहूँ तो पहली बार मुझे उससे जलन हो रही है। तुम बहुत प्यार करते हो ना उससे, अनुष्का ने सिर हिलाकर कहा। हाँ वो तो है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। वो परेशान होती है तो कारण पता लगा ही लेता हूँ, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा। क्या तुम बताओगी ऐसा क्या है जो आयु अपनी ही फैमिली से इतना दूर दूर रहती है, मंथन ने बातों की बातों में पूछा। अनुष्का ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बता देती हूँ, लेकिन उसे ये मत बोलना कि मैंने बताया है। तुम तो जानते हो हमारी फैमिली में हर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। हमारे पैदा होने के टाइम डैड का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो काम मॉम संभालती थी वो कोई और नहीं देख सकता था। ऊपर से हम ट्विन्स थे, मॉम के लिए हम दोनों को संभालना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने आयु के थोड़ा बड़ा होने पर उसे हमारे दादू के साथ रहने के लिए भेज दिया था। दादू के मॉम डैड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वो खुद भी उनसे बात नहीं करते थे और आयु को भी नहीं करने देते थे। ऐसे में आयु को लगने लगा कि मॉम डैड को उसकी परवाह नहीं है। मॉम डैड को भी इतना टाइम नहीं होता था कि वो कॉल कर सकें या उससे मिलने जा सकें। मैंने भी काफी टाइम हॉस्टल में बिताया है, पर वो ज्यादा इमोशनल है। अनुष्का ने मंथन को आयु की नाराजगी का कारण बता दिया था। मंथन उसकी तकलीफ को समझ सकता था। आयु को हमेशा से एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती थी। शायद यही वजह थी जब उन दोनों की दोस्ती हुई तो वो अपना वही इमोशनल सपोर्ट मंथन में ढूंढने लगी। आयु के लिए मंथन एक परफेक्ट पार्टनर था, इसलिए जब मंथन ने आयु को प्रपोज किया तब आयु ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी थी। मंथन ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, मैं कोशिश करूंगा उसके दिल की नाराजगी को दूर कर सकूं। इतना कहकर मंथन ऊपर आयु के पास जाने लगा, वहीं अनुष्का उसे खड़े हुए देख रही थी। मंथन और आयु के रिश्ते को देखकर उसे अच्छा लग रहा था। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मंथन जैसा पार्टनर मिला आयु। एक दोस्त अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है, बशर्ते वो दोस्त हमारी फीलिंग्स को समझे, हमसे सच में प्यार करे, ना कि हमें फोर्स करे, अनुष्का ने मन ही मन कहा। इसी के साथ उसके दिमाग में कुछ कड़वी यादें ताज़ा हो गई थी, पर वो तुरंत ही उससे निकल आई थी। अनुष्का भी मंथन के पीछे आयु के कमरे में जाने लगी तो वहीं आरव इस वक्त अपने घर पर मौजूद था। वो माहिरा के लिए सूप बना रहा था। आज ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी था, पता तो चले इस मॉडल ने कितने दिनों के लिए लीव लिया है। आई होप कि दो दिनों में उसका ये तबियत का ड्रामा ठीक हो जाए, आरव ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर सूप लेकर माहिरा के कमरे में पहुंचा। आरव ने पहली बार महिला के केयर करते हुए कुछ बनाया था। माहिरा आरव को देखते ही उठकर बैठी। वो बोली, थैंक यू सो मच आरव मेरी केयर करने के लिए। मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूंगी। आई नो दादी मुझे पसंद नहीं करती है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें इम्प्रेस करने की। रहने दो माही, तुम्हारी हरकतें देखकर वो डिप्रेस न हो जाएं, आरव ने जवाब दिया और माहिरा को सूप का बोल दे दिया था। आओ बैठो ना आरव, माहिरा ने अपने पास जगह देते हुए कहा, पर आरव उससे थोड़ा खिसक गया। तुम रेस्ट करो, मैं कुछ कॉल्स लेकर आता हूँ, आरव बोला और बाहर आ गया। बाहर आते ही आरव ने आईज रोल की और कहा, इसे बस थोड़ी सी छूट दे दो तो ये चेप होने की कोशिश करती है, सारा मूड खराब कर दिया। मीटिंग में भी जाना था, मैं जानता हूँ ऐसे में मेरा मूड कैसे सही होगा। आरव बड़बड़ाते हुए फ्रिज की तरफ पड़ रहा था। जैसे ही आरव ने आइसक्रीम लेने के लिए फ्रिज खोला, उसने देखा कि वहाँ एक भी आइसक्रीम का डब्बा नहीं था। आरव ने हैरानी जताते हुए अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है, घर में आइसक्रीम नहीं है, ग्रॉसरी हर वीक आती भाई, और कल ही सब आया था। माही तो जानती है कि मुझे आइसक्रीम कितनी पसंद है, वो तो डाइट पर रहती है, फिर कैसे खत्म हो सकती है। तभी अचानक उसकी नज़र डस्टबिन पर पड़ी, जहाँ दो बड़े खाली आइसक्रीम के डब्बे पड़े थे। गुस्से में आकर आरव चिल्लाया, माही ये सब क्यों किया? सो उसने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब की ताकि मेरी अटेंशन मिले। यही वजह है मेरे दिल में चाहकर भी उसके लिए इमोशंस ग्रो नहीं होते। पता नहीं कब अपनी चीप हरकतों से बाज आएगी। माहिरा की इस हरकत से गुस्सा होकर आरव बिना कुछ कहे घर से निकल गया और ऑफिस चला गया। उधर माहिरा अपने कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। आरव के ना आने पर माहिरा ने बेचैनी से कहा, आधा घंटा हो गया, आरव अभी तक क्यों नहीं आया? एक तो सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतनी सारी आइसक्रीम खाने के बाद खुद को मेंटेन रखने के लिए न जाने कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। माहिरा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आरव मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा था, कुछ तो करना ही था उसे अपने पास लाने के लिए। उस दिन जब मैंने देखा कि आयु बीमार थी और आरव उसकी इतनी केयर कर रहा था, तो यही समझ आया कि मैं बीमार पड़ूंगी तो आरव मुझे भी टाइम देगा। सी प्लान भी काम कर गया, पर वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है मुझे ही उठकर देखना पड़ेगा कि आरव को टाइम क्यों लग रहा है। पूरे शरीर में इतना दर्द है कि उठा भी नहीं जा रहा। माहिरा जैसे तैसे करके बाहर आई तो उसने देखा आरव कहीं नहीं था। वो किचन में गई तो किचन बिखरा हुआ था। अचानक उसकी नज़र खुले डस्टबिन और फ्रिज पर गई तो माहिरा को समझते देर नहीं लगी अचानक आरव कहाँ गायब हो गया। वहीं आरव गुस्से में ऑफिस पहुंचा और बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने केबिन में चला गया। उसने किसी के गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। उसका स्टाफ अच्छी तरह जानता था कि जब आरव गुस्से में होता था तो वो किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई काम के सिलसिले में उससे बात करने की हिम्मत भी करता तो उसे भी आरव का गुस्सा झेलना पड़ता। युवानी कब से आरव के आने का इंतजार कर रही थी। उसे आरव को मीटिंग की अपडेट देनी थी। जैसे ही उसने आरव का व्यवहार देखा, युवानी ने मुंह बनाकर मीशा से कहा, आरव सर इतने गुस्से में हैं, लगता है आज तो मेरी शामत आने वाली है। मैं उनसे आज कुछ नहीं पूछने वाली कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, या वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं या नहीं। देखो युवानी, अगर तुमने आरव सर को ये नहीं बताया कि एक घंटे बाद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ख्वाब को लेकर मीटिंग है तो वो वैसे भी गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना कि ख्वाब उनके लिए कितना खास है, मीशा ने जवाब दिया। मीशा की बात भी सही थी, लेकिन युवानी को आरव के गुस्से से भी डर लग रहा था। उसने रिक्वेस्टिंग वे में कहा, तुम भी तो रियान सर की सेक्रेटरी हो, भले ही ख्वाब के सारे डिज़ाइंस आरव सर ने बनाए हों, लेकिन बाकी काम तो हेड डिज़ाइनर का ही है। ये मीटिंग जितनी आरव सर के लिए ज़रूरी है उतनी ही रियान सर के लिए भी, तो तुम क्यों नहीं जाकर आरव सर को बता देती?
मीशा ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं आरव सर के गुस्से का शिकार बनूं? ना बाबा ना, मेरा काम तुम्हें इन्फॉर्म करने जितना ही कहा। मैं रियान सर को बता दूंगी कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने आरव सर को उनके गुस्से की वजह से नहीं बताया। इतना कहकर मीशा ने युवानी को पकड़कर उसका चेहरा आरव की केबिन की तरफ कर दिया। युवानी के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, पता नहीं किस घड़ी में मैंने ये आरव सर की सेक्रेटरी की नौकरी ज्वाइन की थी। माता रानी मुझे बचा लेना, कभी आधी रात को जगा देते हैं और कभी इतने गुस्से में ऑफिस आते हैं कि सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। युवानी खुद से खड़ी बड़बड़ा रही थी। उसकी हालत देखकर मीशा को हंसी आने लगी। तभी हेड डिज़ाइनर रियान वहां आ गया। मीटिंग शुरू ही होने वाली थी, वो सब आरव का ही इंतज़ार कर रहे थे, जबकि युवानी आरव को इन्फॉर्म करने के बजाय वहां खड़ी थी। रियान ने उनके पास जाकर पूछा, युवानी तुमने एके को बता दिया ना कि ख्वाब प्रोजेक्ट की मीटिंग होने वाली है? ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, लॉन्च से लेकर कैटलॉग शूट तक की सारी बातें इसी में फाइनल होंगी। प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट भी देनी है, वो आया क्यों नहीं अब तक? आरव सर मीटिंग में तब आएंगे ना जब वो आरव सर के पास जाकर उन्हें मीटिंग का बताएगी, मीशा ने कंधे उचकाकर कहा। रियान ने हैरानी से पूछा, व्हाट डू यू मीन? क्या हुआ युवानी? डोंट यू नो ये आरव के लिए कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है? युवानी ने डरते हुए कहा, एक्चुअली रियान सर, आरव सर बहुत गुस्से में है, तो क्या आप प्लीज जाकर उन्हें मीटिंग के बारे में बता देंगे? युवानी, मैं आरव की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ, जिसका जो काम है वो वही करे। अगर मीटिंग में जरा भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये लो फाइल और जाकर एके को मीटिंग के बारे में बता दो, रियान ने सख्ती से कहा और जबरदस्ती उसे एक फाइल पकड़ा दी। रियान वहां से चला गया, मीशा भी रियान के पीछे पीछे चली गई। युवानी में अकेले में बड़बड़ाया, पता नहीं क्यों सब मुझे ही फंसाकर चले जाते हैं, अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा, ओखली में सिर दिया है तो मुसल तो झेलना ही पड़ेगा। वही अंदर आरव अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे पहले ही आयु की याद आ रही थी, ऊपर से वो ऑफिस नहीं आ रही थी। उस पर माहिरा की हरकत ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। आरव खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, माही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हर बार मेरा भरोसा तोड़ती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे मन में उसके लिए कभी फीलिंग्स नहीं आएंगी। दूसरी तरफ आयु है, क्यों मैं चाहकर भी उसे सोचना बंद नहीं कर पाता? ये क्या फीलिंग है जो मुझे समझ नहीं आ रही? इस बीच युवानी डरते डरते केबिन में आई। उसने केबिन का डोर नॉक किया तो आरव का ध्यान टूटा। मे आई कम इन सर? युवानी ने धीरे से पूछा। आरव ने तल्खी से तेज आवाज में कहा, जल्दी बोलो, क्या काम है? मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। युवानी अंदर आई और उसने जल्दी जल्दी कहा, सर ये फाइल रियान सर ने दी है। उन्होंने बताया कि ठीक 10 मिनट बाद ख्वाब को लेकर एक जरूरी मीटिंग है जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में लॉन्च से लेकर किस कंपनी के साथ कोलैब करना है और कैटलॉग शूट की सारी डिटेल्स फाइनल होंगी। उसने एक सांस में अपनी बात खत्म कर दी थी। आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, इतना भी जल्दी बोलने को नहीं कहा था कि एक ही सांस में सब बोल डाला। ठीक है, मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। ख्वाब पर जो भी टीम काम कर रही है वो मीटिंग में होनी चाहिए, जो नहीं है उन्हें बोलो कि ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करें। युवानी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओके सर, और वहां से चली गई। लगभग 10 मिनट में आरव के ड्रीम प्रोजेक्ट ख्वाब पर काम करने वाली टीम मीटिंग रूम में इकट्ठा हो चुकी थी। आरव के अलावा हेड डिजाइनर रियान, उनकी असिस्टेंट मीशा और फोटोग्राफर कियान मौजूद थे। मंथन और आयु छुट्टी पर होने की वजह से मीटिंग में नहीं थे। टीम के एक दो और मेंबर भी छुट्टी पर थे। अंदर आते ही आरव ने एक नज़र इधर उधर दौड़ाई। उसे काम में कभी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। आरव के आते ही वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। वो सब उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को महसूस कर सकते थे। आरव ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, मुझे तो नहीं लगता कि ये मीटिंग किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आधे से ज्यादा स्टाफ तो छुट्टी पर है। खैर बताओ, प्रोग्रेस क्या है? कियान, फोटोशूट शुरू हुए आज 1 महीना हो गया। हमने 1 महीने में पूरा शूट पूरा करने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ। कियान ने सफाई दी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। एके, तुम अच्छे से जानते हो कि आयुष का प्रोफेशनल मॉडल नहीं है। एक प्रोफेशनल और न्यू कमर के साथ काम करने में कितना फर्क पड़ता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल मॉडल 1 हफ्ते में शूट पूरा कर देती है, लेकिन न्यू कमर के साथ कई महीने भी लग सकता है। लेकिन मुझे अपने कलेक्शन के लिए जो सही लगा उसे ही हायर किया। अगर डिले की वजह पूछी जाए तो किससे? मैडम तो छुट्टी पर हैं। छोड़ो रियान, तुम बताओ, सारे अटायर्स की फिनिशिंग हो गई? आरव ने अपने गुस्से को काबू करके तल्खी से कहा। रियान ने जवाब दिया, हाँ सब हो गया है, लेकिन जो 2 ड्रेसेस खराब हो गई थीं, उन्हें दोबारा डिजाइन करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, इन दोनों लड़कियों ने न सिर्फ मेरी जिंदगी में बल्कि मेरे काम में भी मुसीबतों का ढेर लगा दिया। एक की वजह से फोटोशूट रुका हुआ है और दूसरी ने अपनी बेवकूफ़ी में 2 अटायर्स खराब कर दिए। क्या इन्हें सिर्फ मैं ही मिला था? आरव के चुप होने पर युवानी ने बीच में कहा, आरव सर, मंथन सर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो उन्होंने उन कंपनीज की लिस्ट भेजी है जो हमारे साथ कोलैब करना चाहती हैं। आरव ने तेज आवाज में कहा, रियली? इतना इम्पोर्टेंट डेटा वो इस तरह भेज रहा है? तुम्हारे मंथन सर और आयु मैम कब तक छुट्टी पर रहेंगे? दोनों की वजह से सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों को बोलो कल ही ऑफिस आए। युवानी ने डरते हुए कहा, लेकिन आरव सर, मंथन सर और आयु मैम तो 10 दिन की छुट्टी पर हैं। एक्चुअली वो दोनों आयु मैम के घर लुधियाना गए हैं। उन्हें आने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। जब आरव को पता चला कि मंथन और आयु बिना उसे बताए लुधियाना आयु के घर चले गए, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना एक शब्द बोले वो गुस्से में मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन में चला गया।